नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय विमानन कंपनियां फंसे यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आज 58 उड़ानें संचालित करेंगी। अमरीका और इसराइल की सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमरीका के टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और अरकांसास में प्राइमरी सहित मध्यावधि चुनाव शुरू। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज शाम कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुवैत के युवराज शेख सभा अल खालिद अल हम्माद अल मुबारक अस सभा से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने इस दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इस कठिन समय में कुवैत के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कुवैत में भारतीय समुदाय की सुरक्षा के लिए कुवैत के नेतृत्व के निरंतर समर्थन की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अस सानी से बातचीत में कतर के साथ एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी बातचीत की और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय को ओमान के निरंतर समर्थन की सराहना की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण फंसे यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारतीय विमानन कंपनियों की आज 58 उड़ानें संचालित करने की योजना है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि इनमें इंडिगो की 30 और एयर इंडिया तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की 23 उड़ानें शामिल हैं। मौजूदा स्थिति के कारण भारतीय एयरलाइंस की 1221 और विदेशी एयरलाइंस की 388 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों को हवाई अड्डे पहुंचने से पहले उड़ान की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। पश्चिम एशिया में संघर्ष पांचवें दिन भी जारी है। इसराइल और अमरीका की संयुक्त सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं। वहीं ईरान ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
ताज़ा खबरों के अनुसार इसराइल ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी तेहरान में परमाणु हथियार विकास केंद्र पर हमले किए। इससे ईरानी शासन की परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नष्ट हुआ है। इसराइल ने कहा है कि अभियान शुरू होने के बाद से उसकी वायुसेना ने लगभग 300 ईरानी मिसाइल लॉन्चरों को निष्क्रिय किया है। इसराइल ने लेबनान में भी अपने हवाई हमले तेज कर दिए हैं और हिजबुल्ला से जुड़े लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया है। दूसरी ओर ईरान ने पश्चिम एशिया के कई देशों पर अपने हमले जारी रखे हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
इस बीच भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत इस संघर्ष को शीघ्र समाप्त किए जाने के पक्ष में है। संघर्ष के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में उछाल आया है। वैश्विक शेयर बाजारों में भी गिरावट आई है। ब्रिटेन में कल गैस की कीमत 3 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। वहीं ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क जुलाई 2024 के बाद पहली बार संक्षेप में $85 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया। इस बीच अमरीका और यूरोप के शेयर बाजारों में भारी गिरावट आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच खाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरने वाले सभी समुद्री व्यापार, विशेष रूप से ऊर्जा व्यापार के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा बीमा और वित्तीय सुरक्षा गारंटी प्रदान की जा रही है। श्री ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा है कि उन्होंने अमरीकी सरकारी एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमरीका अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम को निर्देश दिया है कि वे इस क्षेत्र में तेल टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को बहुत ही उचित मूल्य पर राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करें। श्री ट्रंप ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो अमरीकी नौसेना शीघ्र होर्मुज जल डमरू मध्य से टैंकरों को एस्कॉर्ट प्रदान करना शुरू कर देगी। ईरान द्वारा 5 जहाजों पर हमले के बाद कल चौथे दिन भी होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहा। इससे एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग अवरुद्ध हो गया। फारस की खाड़ी में स्थित समुद्र का ये संकरा हिस्सा वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने खाड़ी क्षेत्र में व्याप्त संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक चलने वाली शत्रुता से श्रीलंका सहित वैश्विक तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के दौरान सहयोगी देशों की संपत्तियों की रक्षा के लिए फ्रांस के परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत को बाल्टिक सागर से भूमध्य सागर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। श्री मैक्रॉन ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमान वाहक पोत को फ्रिगेट और वायुसेना विंग द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी। फ्रांसीसी टीवी पर श्री मैक्रॉन ने कहा कि पिछले कुछ घंटों में रफाल लड़ाकू विमान, वायु रक्षा प्रणाली और हवाई रडार प्रणाली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया है। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने पहले ही कहा है कि वे पिछले सप्ताह के अंत में शुरू हुए अमरीका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों में शामिल नहीं थे, लेकिन वे ईरान की मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता को नष्ट करने के लिए रक्षात्मक कार्रवाई करने को तैयार थे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और अरकानसास में प्राइमरीज के साथ मध्यावधि चुनाव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गए हैं। इनमें अमेरिका के मतदाता ये तय करेंगे कि नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों में प्रमुख रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व कौन से उम्मीदवार करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेन के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को समाप्त करने की चेतावनी दी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के प्रति स्पेन के समर्थन की कमी और नाटो में अपना खर्च बढ़ाने के स्पेन के विरोध का हवाला देते हुए उन्होंने ये चेतावनी दी। इस बीच स्पेन ने कहा है कि वे नाटो का एक प्रमुख सदस्य है और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है तथा यूरोपीय क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अमेरिका की गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टी नोएम ने सांसदों को बताया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान कड़ी कार्रवाई के परिणाम स्वरूप लगभग 30 लाख अवैध अप्रवासी अमेरिका छोड़ चुके हैं। इस कुल संख्या में 22 लाख वे लोग शामिल हैं जो स्वेच्छा से अपने मूल देश में लौट गए हैं और 6,75,000 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर निर्वासित किया गया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की संभावना पर सार्वजनिक परामर्श शुरू कर दिया है। माता पिता, अभिभावकों और युवाओं को इस प्रस्ताव पर ब्रिटेन सरकार के निर्णय लेने से पहले अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी सिडनी के लिए खसरे की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी सिडनी के लोगों को खसरे के लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 21 फरवरी के बाद से ये खसरे की चौथी चेतावनी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि 2026 की शुरुआत से न्यू साउथ वेल्स में 23 पुष्ट मामले सामने आए हैं। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का पहला सेमीफाइनल आज शाम दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय विमानन कंपनियां फंसे यात्रियों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत और खाड़ी क्षेत्र के बीच आज 58 उड़ानें संचालित करेंगी। अमरीका और इसराइल की सेनाओं ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के लगभग 60 ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमरीका के टेक्सास, उत्तरी कैरोलिना और अरकानसास में प्राइमरी सहित मध्यावधि चुनाव शुरू। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यज्ञ समाप्त हुआ। नमस्कार।